एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि सच पूछिए तो आने वाली पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी की, एक ऐसा दौर जिसने कहीं ना कहीं आधुनिकता की नींव रखी।
बिल्कुल। और इस दिलचस्प सदी को समझने के लिए हमारे गाइड होंगे जाने माने इतिहासकार पॉल लैंगफोर्ड।
हाँ,
हमारे पास उनके काम पर आधारित जानकारी है जिसमें उनकी दो प्रमुख किताबें शामिल हैं। एक काफी विस्तृत अध्ययन है और दूसरा एक थोड़ा संक्षिप्त परिचय।
अच्छा,
तो इन स्रोतों से हम कोशिश करेंगे 18वीं सदी के ब्रिटेन के बिल्कुल दिल में झांकने की।
और सोचने वाली बात है ना कि आखिर ऐसा क्या हुआ उस एक सदी में कि एक छोटा सा द्वीप पर बसा देश जो यूरोप की कई ताकतों में बस एक था, वो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। क्या ये सिर्फ मतलब लड़ाइयों और राजनीति की कहानी थी या कुछ और भी था?
यहीं पर लैंगफोर्ड का नजरिया बहुत खास हो जाता है। वो बताती हैं कि ये कहानी सतह से कहीं ज्यादा गहरी है।
अच्छा,
ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की नहीं बल्कि ब्रिटेन के समाज, उसकी संस्कृति, उसकी अर्थव्यवस्था और हाँ, आम लोगों की सोच में आए बुनियादी बदलावों की कहानी है। और आज भी हम जिन व्यवस्थाओं और विचारों के बीच जी रहे हैं उनमें से कई की जड़ें आप देखिए इसी दौर में मिलती हैं।
हाँ, ये गत तो है।
तो ये पड़ताल सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज को समझने की भी एक कोशिश है एक तरह से।
तो चलिए फिर इस सफर पर निकलते हैं और पॉल लैंगफोर्ड के नजरिए से 18वीं सदी के ब्रिटेन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये पॉल लैंगफोर्ड हैं कौन, मतलब थोड़ा इनके बारे में बात करते हैं। आखिर क्यों इनका नजरिया इतना अहम माना जाता है?
हाँ, तो पॉल लैंगफोर्ड जो थे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आधुनिक इतिहास के प्रोफेसर थे और 18वीं सदी के ब्रिटेन पर दुनिया के मतलब अग्रणी विशेषज्ञों में गिने जाते थे।
अच्छा, मतलब बड़े नाम थे।
हाँ बिल्कुल। और उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनका इतिहास को देखने का तरीका। वो सिर्फ संसद के गलियारों या युद्ध के मैदानों तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने उन चीजों पर ध्यान दिलाया जिन पर अक्सर इतिहासकारों की नजर शायद नहीं जाती थी, जैसे उस दौर में लोगों के व्यवहार में शिष्टता, जिसे अंग्रेजी में पोलाइटनेस कहते हैं, उसका चलन कैसे बढ़ा,
अच्छा,
या फिर कैसे लोग अचानक ज्यादा चीजें खरीदने लगे जिसे हम आज कंज्यूमरिज्म कहते हैं,
हाँ, कंज्यूमरिज्म।
और कैसे पहली बार आम लोगों की राय मतलब पब्लिक ओपिनियन एक राजनीतिक ताकत के तौर पर उभरने लगी। ये सब उन्होंने देखा।
ओहो, मतलब वो इतिहास को सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं देख रहे थे बल्कि नीचे से ऊपर और चारों तरफ से।
बिल्कुल। सिर्फ शासकों और अमीरों की कहानी नहीं बल्कि व्यापारी, कारीगर, लेखक, आम नागरिक सबके अनुभवों को उन्होंने अपनी कहानी में जगा दी।
ये तो बहुत दिलचस्प अप्रोच
है ना। उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों को अलग अलग डब्बों में बंद करके नहीं देखा बल्कि वो ये दिखाती हैं कि ये सब धागे कैसे एक दूसरे में गुंथे हुए थे और मिलकर समाज का पूरा ताना बाना बदल रहे थे। उनका मानना था कि किसी युग को समझने के लिए उसके हर पहलू को एक साथ देखना जरूरी है और इसीलिए उनका काम हमें 18वीं सदी की एक ज्यादा मुकम्मल, ज्यादा जीती जागती तस्वीर देता है।
तो लैंगफोर्ड के विश्लेषण का सार क्या है, मतलब निचोड़ क्या है उनका?
उनका केंद्रीय तर्क ये है कि 18वीं सदी ब्रिटेन के लिए जबरदस्त बदलाव और उथल पुथल का दौर था।
उथल पुथल, मुझे लगा था इसे सभ्य युग कहते हैं, शांति वाला।
हाँ, अक्सर इसे शांति और स्थिरता का ऑगस्टिन एज या सभ्य युग कह दिया जाता है, लेकिन लैंगफोर्ड इसी छवि को चुनौती देती हैं। वो कहती हैं कि ये सदी स्थिरता की नहीं बल्कि गजब की गतिशीलता, ऊर्जा और गहरे विरोधाभासों से भरी थी।
अच्छा, विरोधाभास।
हाँ बिल्कुल। और इसी उथल पुथल ने, इसी डायनामिज्म ने आधुनिक ब्रिटेन को गढ़ा।
हाँ, और इस बदलाव को समझने के लिए उन्होंने दो बड़े विचारों पर जोर दिया, जैसा आपने पहले भी कहा था। एक तो वो सभ्य बनाने की प्रक्रिया,
हाँ सिविलाइजिंग प्रोसेस,
और शिष्ट समाज यानी पोलाइट सोसाइटी का विकास, मतलब लोगों के आपसी व्यवहार, बातचीत के तौर तरीके, कला संस्कृति में रुचि, इन सब में एक बड़ा बदलाव आया। शिष्टाचार एक सामाजिक गुण बन गया है ना।
बिल्कुल। और दूसरा विचार जो शायद आज की दुनिया के लिए और भी ज्यादा प्रासंगिक है वो है ब्रिटेन का एक राजकोषीय सैन्य राज्य के रूप में उभरना।
राजकोषीय सैन्य राज्य, थोड़ा भारी शब्द है।
हाँ, फिस्कल मिलिट्री स्टेट, थोड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन मतलब सीधा सा है। ब्रिटेन एक ऐसी सरकारी मशीनरी बनाने में कामयाब हो गया जो युद्ध लड़ने के लिए अभूतपूर्व ढंग से पैसा जुटा सकती थी।
पैसा कैसे?
टैक्स लगाकर, और सबसे जरूरी बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय कर्ज लेकर, नेशनल डेप्ट जिसे कहते हैं।
ओहो, कर्ज लेकर युद्ध लड़ना।
हाँ, और ये क्षमता ब्रिटेन की वैश्विक शक्ति का असली इंजन बनी।
तो मतलब लैंगफोर्ड दिखा रहे हैं कि व्यापार से आने वाला पैसा, लगातार लड़े जा रहे युद्ध,
हाँ,
और एक मजबूत होती सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तीनों चीजें एक दूसरे को ताकत दे रही थी।
बिल्कुल सही। ये कोई अलग अलग कहानियां नहीं, बल्कि एक ही बड़ी कहानी के हिस्से थे जिसने ब्रिटेन को एक द्वीप राष्ट्र से उठाकर दुनिया के मंच पर सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी बना दिया।
गजब।
उनका लक्ष्य यही समझाना है कि ये असाधारण कायापलट आखिर हुआ कैसे।
18वीं सदी में ब्रिटेन का पॉलिटिकल मैप कैसे बदल रहा था?
देखिए, इसकी नींव तो असल में 1688 की गौरवशाली क्रांति या ग्लोरियस रेवोल्यूशन में ही पड़ गई थी। उसने राजा की शक्तियों पर काफी हद तक अंकुश लगा दिया था।
हाँ, सुना है इसके बारे में।
तो अब असली ताकत धीरे धीरे संसद के हाथों में आ रही थी, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी सामंतों और बिशप की सभा, और हाउस ऑफ कॉमन्स यानी चुने हुए प्रतिनिधि शामिल थे।
चुने हुए मतलब डेमोक्रेसी आ गई थी?
नहीं नहीं, वैसे नहीं। ये चुनाव आज जैसे बिल्कुल नहीं थे। वोट देने का अधिकार बहुत ही कम लोगों, खासतौर पर जमीन जायदाद वाले पुरुषों तक ही सीमित था।
अच्छा, तो फिर भी राजा से तो अलग था।
हाँ बिल्कुल, इसे मिलीजुली संवैधानिक व्यवस्था या मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। लेकिन लैंगफोर्ड बताते हैं कि असल सत्ता अभी भी बड़े जमींदार कुलीनों और उनके गुटों के हाथ में ही थी, और सिस्टम में भाई भतीजावाद, जिसे पेट्रोनेज कहते हैं।
हाँ, पेट्रोनेज।
और जिसे आज हम भ्रष्टाचार कहेंगे, वो बहुत आम था। इसी माहौल में सर रॉबर्ट वॉलपोल जैसे नेता उभरे। उन्हें अक्सर ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री माना जाता है।
वॉलपोल, हाँ नाम सुना है।
वो कोई क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि उन्होंने इसी सिस्टम का इस्तेमाल करके संसद में अपने समर्थकों का बहुमत बनाए रखकर लगभग 20 साल तक राजनीतिक स्थिरता कायम की।
20 साल काफी लंबा समय है।
हाँ, और ये स्थिरता बहुत जरूरी थी। इसने व्यापार और अर्थव्यवस्था के फलने फूलने के लिए जमीन तैयार की, और धीरे धीरे व्यापारी वर्ग और पढ़े लिखे पेशेवर लोग भी राजनीति में ज्यादा दखल देने लगे थे।
अच्छा, तो राजनीति बदल रही थी, पर इसका असर समाज और अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ रहा था? आपने वाणिज्यिक क्रांति का जिक्र किया था।
हाँ, ये औद्योगिक क्रांति से ठीक पहले का दौर है, लेकिन लैंगफोर्ड इसे वाणिज्यिक क्रांति यानी कमर्शियल रेवोल्यूशन कहती हैं। इसमें हुआ ये कि विदेशों के साथ, खासकर अटलांटिक पार अमेरिका और कैरेबियन द्वीप और भारत के साथ, व्यापार में जबरदस्त तेजी आई।
अटलांटिक पार मतलब?
मतलब चीनी, तंबाकू, कपास, और दुर्भाग्य से गुलामों का व्यापार भी। इसने ब्रिटेन में बहुत दौलत पैदा की, और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना जाल फैला रही थी।
और इस पैसे को संभालने के लिए भी तो कुछ इंतजाम हुए होंगे।
निश्चित रूप से, बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे वित्तीय संस्थान स्थापित हुए, और यहीं से सरकार ने, जैसा मैंने कहा, युद्धों के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लेना शुरू किया, नेशनल डेट।
ये बड़ी बात थी।
ये एक क्रांतिकारी कदम था। इसने सरकार को इतनी आर्थिक शक्ति दे दी जितनी पहले कभी नहीं थी। वो अब लंबे और महंगे युद्ध लड़ने में सक्षम हो गई।
और आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर हुआ?
असर बहुत गहरा असर पड़ा। इस व्यापारिक क्रांति ने एक नए मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास को जन्म दिया। व्यापारी, दुकानदार, वकील, डॉक्टर, क्लर्क,
मिडिल क्लास।
हाँ, लोगों के पास खर्च करने के लिए पहले से ज्यादा पैसा था, और वो ज्यादा चीजें खरीदने में लगे थे। कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, और हाँ, चाय, चीनी।
चाय, हाँ वो तो है।
इसी को लैंगफोर्ड उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म का शुरुआती दौर कहती हैं। लंदन तो पहले से ही बड़ा शहर था, लेकिन अब ब्रिस्टल, लिवरपूल, मैनचेस्टर, ग्लासगो जैसे शहर भी व्यापार और उद्योग के बड़े केंद्र बन गए।
कोई खास उदाहरण है इस बदलाव का, कोई व्यक्ति या कंपनी?
एक बहुत अच्छा उदाहरण है जोशिया वेजवुड का। वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक उद्यमी थे।
वेजवुड, नाम सुना सुना सा लग रहा है।
हाँ, मशहूर है। उन्होंने न सिर्फ बर्तन बनाने की नई तकनीकें विकसित की, बल्कि पहली बार बड़े पैमाने पर विज्ञापन, शोरूम और कैटलॉग का इस्तेमाल करके अपने उत्पादों की मार्केटिंग की।
अच्छा, मार्केटिंग भी?
हाँ, उनके बनाए सुंदर और टिकाऊ बर्तन जल्द ही शाही महलों से लेकर मध्य वर्ग के घरों तक पहुंच गए। ये दिखाता है कि कैसे उत्पादन, व्यापार और समाज की पसंद बदल रही थी,
सब जुड़ा हुआ था।
समाज की बनावट की बात करें तो क्या ये सिर्फ अमीरों और गरीबों का समाज था या बीच में भी कुछ था? क्या लोगों के लिए अपनी मेहनत या काबिलियत से आगे बढ़ने के मौके थे?
देखिए, लैंगफोर्ड कहती हैं कि समाज अब भी काफी हद तक ऊंच नीच मतलब हायरार्की पर आधारित था। जमींदार कुलीन वर्ग का दबदबा अब भी कायम था, उनके पास राजनीतिक ताकत और सामाजिक रुतबा था, लेकिन
हाँ।
लेकिन पहले के मुकाबले स्थिति बदल रही थी। अब सिर्फ जन्म या जमीनी नहीं बल्कि पैसा कमाना, शिक्षा हासिल करना या कला संस्कृति के क्षेत्र में नाम कमाना भी सामाजिक प्रतिष्ठा का जरिया बन रहा था।
अच्छा, तो मतलब आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल रहे थे, सिर्फ जमीन वाले ही नहीं।
हाँ, खासकर शहरों में व्यापारी वर्ग बहुत अमीर और प्रभावशाली हो रहा था। वकील, डॉक्टर, पादरी जैसे पेशेवर लोगों का सम्मान बढ़ रहा था। एक पहचाना जा सकने वाला मध्यम वर्ग उभर रहा था, जिसकी अपनी जीवन शैली, अपने मूल्य जैसे मेहनत, बचत, शिक्षा और अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं।
कोई उदाहरण है जो इस बदलाव को दिखाता हो? कोई ऐसा व्यक्ति जो नीचे से ऊपर आया?
सैमुअल जॉनसन का उदाहरण बहुत सटीक है।
सैमुअल जॉनसन, डिक्शनरी वाले?
हाँ, वही। वे एक गरीब किताब बेचने वाले के बेटे थे, लेकिन अपनी असाधारण प्रतिभा और मेहनत के दम पर वे लंदन के सबसे बड़े लेखक और बौद्धिक हस्ती बन गए। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का पहला व्यापक शब्दकोश तैयार किया।
कमाल है।
उनका सम्मान बड़े बड़े लॉर्ड्स भी करते थे। ये दिखाता है कि संस्कृति और बौद्धिकता के क्षेत्र में भी सामाजिक गतिशीलता बढ़ रही थी, टैलेंट की कद्र होने लगी थी, थोड़ी ही सही।
ये सब तो बड़ी पॉजिटिव बातें लग रही हैं, तरक्की, नए मौके। लेकिन आपने शुरू में विरोधाभासों का जिक्र किया था। लैंगफोर्ड शिष्टता और क्रूरता के एक साथ होने की बात करती हैं, ये क्या मामला है?
हाँ, ये 18वीं सदी का एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा परेशान करने वाला पहलू है। एक तरफ जैसा हमने कहा, शिष्ट समाज बन रहा था। लोग बेहतर तौर तरीकों, सलीकेदार बातचीत, फैशनेबल कपड़ों और कला संगीत में रुचि पर जोर दे रहे थे। शहरों में कॉफी हाउस खुले जहां लोग अखबार पढ़ते और राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर बहस करते थे। क्लब बने, थिएटर लोकप्रिय हुए, नाच गाने की महफिलें सजी। लोग सभ्य और सुसंस्कृत दिखना चाहते थे।
तो फिर क्रूरता कहां से आई?
लैंगफोर्ड हमें याद दिलाती हैं कि ये शिष्टता की परत अक्सर बहुत पतली होती थी। उसी समाज में भयानक क्रूरता भी आम थी।
जैसे?
जैसे सरेआम फांसी देना। ये एक सार्वजनिक तमाशा था जिसे देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ती थी, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल होते थे।
क्या कह रहे हैं, तमाशा?
हाँ, और जानवरों की खूनी लड़ाइयाँ जैसे मुर्गों की लड़ाई या सांडों को कुत्तों से भिड़वाना, ये सब लोकप्रिय मनोरंजन थे।
हे भगवान।
और कानून इतने सख्त थे कि 100 से ज्यादा अपराधों के लिए मौत की सजा थी, जिनमें छोटी मोटी चोरी भी शामिल थी। इसे इतिहासकारों ने खूनी कानून या ब्लडी कोड कहा है।
ये तो वाकई चौंकाने वाला विरोधाभास है। एक तरफ कॉफी हाउस में फिलॉसफी पर बहस, दूसरी तरफ चौराहे पर फांसी का तमाशा।
बिल्कुल, लैंगफोर्ड कहती हैं कि ये विरोधाभास उस समाज के गहरे तनावों को दिखाता है। शायद ये तेजी से हो रहे बदलाव, शहरीकरण और पुरानी बर्बरता के बीच का संघर्ष था। शिष्टता शायद एक तरीका था इस क्रूरता और अनिश्चितता भरी दुनिया में थोड़ी व्यवस्था और नियंत्रण लाने का।
सोचने वाली बात है। और इसी उथल पुथल भरे समाज के साथ साथ ब्रिटेन दुनिया में भी फैल रहा था। साम्राज्य विस्तार के बारे में लैंगफोर्ड क्या कहती हैं?
सप्तवर्षीय युद्ध यानी 7 Years War में फ्रांस को हराने के बाद उत्तरी अमेरिका और भारत में उसका दबदबा एकदम कायम हो गया।
हाँ, वो निर्णायक युद्ध था।
बिल्कुल। कैरेबियन द्वीपों में चीनी के बागान उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम थे, लेकिन ये सिर्फ जमीन जीतना नहीं था।
मतलब
ये कि साम्राज्य सिर्फ नक्शे पर कब्जा नहीं था, इससे व्यापार को जबरदस्त फायदा हुआ। लाखों लोग ब्रिटेन छोड़कर इन नई कॉलोनियों में जाकर बस गए और ब्रिटेन की अपनी संस्कृति पर भी बाहरी दुनिया का असर पड़ा। चाय पीना राष्ट्रीय आदत बन गया।
हाँ, चाय तो है ही।
चीन से आए चीनी मिट्टी के बर्तन फैशन में आ गए। भारत से सूती कपड़े, कैलिको जिसे कहते थे, वो लोकप्रिय हुए। तो साम्राज्य ने ब्रिटेन को अंदर से भी बदला।
इसका कोई उदाहरण?
वॉरेन हेस्टिंग्स का जिक्र आता है अक्सर। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनका मामला इस जटिलता को बहुत अच्छे से दिखाता है। उन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत किया, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार और ज्यादती के गंभीर आरोप लगे।
हाँ, महाभियोग चला था उन पर।
बिल्कुल। ब्रिटेन वापस लौटने पर उन पर संसद में महाभियोग चलाया गया। जो सालों तक चला। ये केस दिखाता है कि साम्राज्य चलाने में व्यापारिक लालच, प्रशासनिक जिम्मेदारियों और नैतिक सवालों के बीच कितना गहरा टकराव था। लोग ब्रिटेन में भी इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या साम्राज्य को ऐसे चलाया जाना चाहिए।
और इसी दौरान एक ब्रिटिश पहचान भी बन रही थी, अंग्रेज, स्कॉटिश, वेल्श से अलग।
हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। पहले लोग खुद को अंग्रेज, स्कॉटिश या वेल्श मानते थे, लेकिन 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के विलय से ग्रेट ब्रिटेन बना।
एक्ट ऑफ यूनियन।
हाँ, फिर साझा प्रोटेस्टेंट धर्म और सबसे बढ़कर कैथोलिक फ्रांस के साथ लगातार चलने वाली दुश्मनी और युद्धों ने एक साझा ब्रिटिश पहचान को गढ़ने में मदद की। हम ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट आज़ाद बनाम वो फ्रेंच कैथोलिक निरंकुश का विचार मजबूत हुआ।
रूल ब्रिटानिया जैसे गाने शायद इसी दौर की देन है, जो आज भी गाए जाते हैं।
बिल्कुल, देशभक्ति के गीत लिखे गए, राष्ट्रीय प्रतीक जैसे जॉन बुल का वो कार्टून चरित्र लोकप्रिय हुए। ये सब तरीके थे एक ऐसी राष्ट्रीय भावना पैदा करने के जो अलग अलग हिस्सों के लोगों को एक साथ जोड़ सके, खासकर युद्ध के समय।
आपने युद्ध की बात की और लैंगफोर्ड के राजकोषीय सैन्य राज्य के विचार की भी, क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? ये उनके विश्लेषण का एक सेंट्रल पॉइंट लगता है।
हाँ, ये लैंगफोर्ड के काम का शायद सबसे अहम पहलू है। उनका तर्क है कि 18वीं सदी का ब्रिटेन मूल रूप से युद्ध लड़ने के लिए बनी एक मशीन था।
मशीन युद्ध लड़ने के लिए।
हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आंकड़े देखें तो ब्रिटेन इस सदी के लगभग आधे समय किसी न किसी बड़े युद्ध में उलझा रहा, खासकर फ्रांस के साथ वैश्विक वर्चस्व की लड़ाई में।
बाप रे, आधा समय युद्ध में? लेकिन युद्ध तो बहुत महंगे होते हैं, इतना पैसा कहाँ से आया?
यहीं पर वो राजकोषीय सैन्य राज्य का तंत्र काम आया। सरकार ने दो मुख्य काम किए। पहला, टैक्स बढ़ाए, खासकर आम लोगों के इस्तेमाल की चीजों, नमक, बियर, साबुन, यहाँ तक कि खिड़कियों पर भी, इन पर लगने वाले अप्रत्यक्ष कर यानी एक्साइज टैक्स बढ़ाए।
खिड़कियों पर टैक्स?
हाँ, और ये टैक्स वसूलने के लिए एक बड़ी नौकरशाही खड़ी की गई। दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण, सरकार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और शहर के वित्तीय बाजार के जरिए बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय कर्ज लेना शुरू किया, नेशनल डेट।
अच्छा, वो कर्ज वाला सिस्टम।
हाँ, अमीर लोग और व्यापारी सरकार को पैसा उधार देते थे और सरकार उन्हें ब्याज चुकाने का वादा करती थी।
तो ये कर्ज चुकाया कैसे जाता था, सिर्फ टैक्स से?
यहीं पर चक्कर पूरा होता है। युद्ध में जीत से साम्राज्य फैलता था।
हाँ।
साम्राज्य से नए बाजार और सस्ते संसाधन मिलते थे, जिससे व्यापार बढ़ता था।
अच्छा।
बढ़ते व्यापार से सरकार की टैक्स आमदनी बढ़ती थी और इसी आमदनी से वो कर्ज का ब्याज चुकाती थी। इस तरह युद्ध, कर्ज, टैक्स, व्यापार और साम्राज्य, ये सब एक दूसरे को मजबूत करने वाला एक दुष्चक्र कहें या सफल चक्र कहें, वो बन गया था।
गजब का सिस्टम बना लिया था। तो विलियम पिट द एल्डर जैसे नेता जिन्होंने सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन को जीत दिलाई, असल में इसी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे।
बिल्कुल, लैंगफोर्ड के अनुसार ब्रिटेन की असाधारण सफलता का राज यही था, उसकी युद्ध छेड़ने और उसके लिए पैसा जुटाने की अभूतपूर्व क्षमता। ये क्षमता उसे अपने प्रतिद्वंदियों, खासकर फ्रांस पर भारी बढ़त देती थी।
आखिर में उस दौर के विचारों और धार्मिक माहौल पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये ज्ञानोदय यानी एनलाइटनमेंट का भी जमाना था, है ना?
हाँ, बिल्कुल। जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन और आइजक न्यूटन के वैज्ञानिक खोजों की विरासत पर ब्रिटेन में तर्क, कारण, अनुभव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर बढ़ा।
बड़े नाम थे ये तो।
बहुत बड़े। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखकर आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव रखी। डेविड ह्यूम ने दर्शन में संदेहवाद को बढ़ावा दिया। एडवर्ड गिबन ने रोमन साम्राज्य के पतन का विशाल इतिहास लिखा। मतलब एक बौद्धिक गहमागहमी का माहौल था।
लेकिन क्या इसका असर आम लोगों तक पहुंचा? क्या सब लोग तर्कवादी हो गए थे?
यहाँ भी लैंगफोर्ड एक संतुलन साधती हैं। वो कहती हैं कि ब्रिटिश ज्ञानोदय फ्रांस जितना क्रांतिकारी या नास्तिक नहीं था, ये ज्यादा व्यवहारिक था और अक्सर स्थापित धर्म और सामाजिक व्यवस्था के साथ समझौता करके चलता था।
अच्छा।
और हाँ, इसका असर मुख्य रूप से पढ़े लिखे, अभिजात और मध्यवर्ग तक ही सीमित था। आम लोगों के जीवन में पुराने अंधविश्वास और पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं अब भी बहुत मजबूत थीं।
तो धर्म के क्षेत्र में क्या हो रहा था, चर्च ऑफ इंग्लैंड के अलावा?
वहां भी बड़ी हलचल थी। स्थापित चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो काफी हद तक सरकार के नियंत्रण में था, उसे नई धार्मिक धाराओं से चुनौती मिल रही थी।
जॉन वेस्ली और जॉर्ज व्हाइटफील्ड जैसे करिश्माई प्रचारकों ने मेथडिज्म आंदोलन शुरू किया।
मेथडिज्म ये क्या था?
उनका जोर व्यक्तिगत धार्मिक अनुभव, भावनात्मक भक्ति और सीधे आम लोगों के बीच जाकर प्रचार करने पर था। वो बड़े बड़े मैदानों में हजारों लोगों को उपदेश देते थे।
और ये आंदोलन लोकप्रिय हुआ?
बहुत ज्यादा, खासकर औद्योगिक इलाकों में बस रहे मजदूर वर्ग और छोटे कारीगरों के बीच, जिन्हें शायद स्थापित चर्च अपने जैसा नहीं लगता था। मेथडिज्म ने उन्हें एक समुदाय और आध्यात्मिक सहारा दिया।
तो मतलब ज्ञानोदय के साथ साथ धर्म की भी एक नई लहर चल रही थी।
हाँ, ये दिखाता है कि ज्ञानोदय के तर्कवाद के साथ साथ या शायद उसी के समानांतर भावनात्मक और व्यक्तिगत धर्म की एक शक्तिशाली लहर भी चल रही थी। फिर से वही विरोधाभास।
तो अगर हमें लैंगफोर्ड के विश्लेषण से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से पहली और सबसे जरूरी बात है इस सदी के गहरे विरोधाभास।
हाँ, ये बात बार बार आ रही है।
शिष्टाचार के साथ क्रूरता, आजादी के नारों के बीच फलता फूलता दास व्यापार, तर्क और विज्ञान की प्रगति के साथ गहरी धार्मिक भावनाएं, लैंगफोर्ड दिखाती है कि यह सदी इन्हीं तनावों से बुनी हुई थी।
हाँ, ये विरोधाभास वाली बात बहुत अहम है। दूसरी बात जो मुझे लगती है वो है वाणिज्य और युद्ध का वो अटूट रिश्ता। ये राजकोषीय सैन्य राज्य का विचार कि ब्रिटेन की तरक्की और ताकत सीधे तौर पर उसकी युद्ध लड़ने और उसके लिए पैसा जुटाने की क्षमता से जुड़ी थी। व्यापार साम्राज्य को पैसा देता था और साम्राज्य व्यापार को बाजार। ये चक्र आज भी कई रूपों में दिखता है शायद।
बिल्कुल। तीसरा, एक मिलीजुली ब्रिटिश पहचान का निर्माण। ये सिर्फ राजनीतिक विलय नहीं था, बल्कि साझा संस्कृति, साझा धर्म और हाँ, सबसे बढ़कर एक साझा बाहरी दुश्मन यानी फ्रांस के खिलाफ एकजुट होकर ये पहचान गढ़ी गई। राष्ट्रीय पहचान कैसे बनती है, इसका ये क्लासिक उदाहरण है।
चौथा, समाज में बढ़ती गतिशीलता लेकिन बनी रहती असमानता। पैसा, शिक्षा और काबिलियत का महत्व बढ़ा, लोगों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुले, लेकिन पुरानी जमींदारी व्यवस्था और सामाजिक ऊंच नीच भी काफी हद तक कायम रही। एक जटिल सामाजिक संरचना उभर रही थी।
और पांचवा, जिसे लैंगफोर्ड बहुत महत्व देती हैं, वो है सार्वजनिक दायरा यानी पब्लिक स्फेयर का उदय। अखबार, पत्रिकाएं, कॉफी हाउस, बहस करने वाली सोसाइटियां, इन सब के जरिए आम मतलब पढ़े लिखे लोगों की राय बनने लगी और धीरे धीरे उसका राजनीतिक असर भी होने लगा।
पब्लिक ओपिनियन।
हाँ, सरकारें अब जनमत को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। सूचना और बहस का ये नया सार्वजनिक मंच कहीं ना कहीं आधुनिक लोकतंत्र की नींव बना।
लैंगफोर्ड के कुछ विचार वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे एक बाजू मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि ब्रिटेन का साम्राज्य विस्तार और उसके समाज का अंदरूनी बदलाव अलग अलग नहीं थे।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
वो एक ही सिक्के के दो पहलू थे। दुनिया में ब्रिटेन की पहुंच ने उसके अंदरूनी समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को बदला, और अंदरूनी बदलावों ने उसे दुनिया में और फैलने की ताकत दी।
बिल्कुल। और शिष्टता के बारे में उनका विचार भी गहरा है। ये सिर्फ ऊपरी दिखावा या मैनर्स सीखना नहीं था, ये लोगों के आपसी रिश्तों, उनकी सामाजिक पहचान और खुद को देखने के नजरिए में एक बुनियादी बदलाव ला रहा था। ये एक तरह की नई सांस्कृतिक पूंजी बन गई थी।
तीसरा, वाणिज्यिक क्रांति का असर सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। लैंगफोर्ड तर्क देती हैं कि इसने इंसान की क्षमताओं, व्यक्तिगत तरक्की की संभावनाओं और समाज के बारे में नए विचार पैदा किए। मुनाफा कमाना, जोखिम उठाना, उद्यम करना, इन चीजों को सामाजिक रूप से स्वीकार्यता मिली। आधुनिक पूंजीवादी सोच की जड़ें यहीं मजबूत हुई।
चौथा, ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था का वो अनोखा संतुलन। लैंगफोर्ड दिखाती हैं कि ये व्यवस्था एक तरफ इतनी स्थिर थी कि फ्रांस जैसी क्रांति से बची रही, लेकिन दूसरी तरफ इतनी लचीली भी थी कि समय के साथ धीरे धीरे सुधारों को अपना सकी।
हाँ, क्रांति नहीं हुई वहाँ।
हाँ, ये स्थिरता और लचीलेपन का मिश्रण उसकी कामयाबी का एक राज था।
और पांचवा, ज्ञान और संस्कृति का फैलाव। जैसे जैसे साक्षरता बढ़ी और छपाई सस्ती हुई, किताबें, अखबार, पत्रिकाएं ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगी, इससे ज्ञान और विचारों पर कुछ खास वर्गों का एकाधिकार टूटा। लेखकों, पत्रकारों, कलाकारों का प्रभाव बढ़ा, जिसने पुरानी सामाजिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं चुनौती दी।
अब सवाल ये उठता है कि 250 साल पुरानी इन बातों का आज हमारे लिए क्या महत्व है? क्या हम ब्रिटेन के 18वीं सदी के इतिहास से आज कुछ सीख सकते हैं? मेरे ख्याल से तो बहुत कुछ।
जैसे कि क्या कनेक्शन है आज से?
जैसे आज हम सरकारों के बड़े बड़े बजट्स देखते हैं, राष्ट्रीय कर्ज की बात सुनते हैं, सेंट्रल बैंकों की भूमिका देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है,
हाँ।
इन सब चीजों की जड़ें 18वीं सदी के ब्रिटेन के इसी राजकोषीय सैन्य राज्य मॉडल में है। उस वक्त ये एक क्रांतिकारी विचार था कि सरकार कर्ज लेकर बड़े काम कर सकती है, खासकर युद्ध। आज की पूरी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था कहीं ना कहीं उसी मॉडल पर खड़ी है।
ये तो सीधा कनेक्शन है। और ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या कहेंगे? आज ये शब्द बहुत आम है।
हाँ, लैंगफोर्ड का काम दिखाता है कि 18वीं सदी एक तरह से पहले बड़े ग्लोबलाइजेशन का दौर था। व्यापार दुनिया भर में फैल रहा था, लोग एक महाद्वीप से दूसरे में जा रहे थे, विचार फैल रहे थे। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन अपने साथ क्या लाया?
दौलत,
जबरदस्त दौलत, हाँ, लेकिन साथ ही भयानक असमानता, साम्राज्यवाद और दास व्यापार जैसा क्रूर शोषण भी। ये आज के ग्लोबलाइजेशन के बारे में सोचते हुए एक जरूरी सबक या चेतावनी देता है कि तरक्की की कीमत कौन चुकाता है।
राष्ट्रीय पहचान वाली बात भी आज बहुत प्रासंगिक लगती है ना?
बिल्कुल। राष्ट्रीय पहचान कैसे बनाई जाती है? साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा, धर्म और अक्सर किसी बाहरी दुश्मन के डर का इस्तेमाल करके। यह प्रक्रिया 18वीं सदी के ब्रिटेन में साफ दिखती है। आज भी दुनिया भर में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय पहचान के मुद्दे इसी तरह गढ़े और इस्तेमाल किए जाते हैं।
मीडिया और जनमत की भूमिका, इसका आज से क्या लेना देना?
हाँ, लैंगफोर्ड दिखाती हैं कि कैसे प्रिंट मीडिया, अखबार, पर्चे ने जनमत को आकार देने और सत्ता पर दबाव बनाने का काम शुरू किया। आज डिजिटल मीडिया के ज़माने में यह भूमिका और भी बड़ी और जटिल हो गई है, लेकिन इसकी शुरुआत उसी दौर में देखी जा सकती है।
सही बात है।
सूचना तक पहुंच और सार्वजनिक बहस लोकतंत्र के लिए कितनी ज़रूरी और कभी कभी कितनी खतरनाक हो सकती है, इसकी जड़ें वहीं हैं।
और शायद सबसे बड़ी सीख जो हमें आज याद रखनी चाहिए,
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख है आर्थिक तरक्की की नैतिक लागत पर सवाल उठाना। 18वीं सदी का ब्रिटेन समृद्ध और शक्तिशाली बना, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी नींव में दास व्यापार, औपनिवेशिक शोषण और आम लोगों पर भारी टैक्स का बोझ भी था। लैंगफोर्ड हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या विकास और प्रगति हमेशा निर्दोष होते हैं? आज भी जब हम बड़े आर्थिक लक्ष्यों की बात करते हैं तो हमें ये पूछना चाहिए कि इसकी मानवीय और नैतिक कीमत क्या है और कौन चुका रहा है।
तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि आज की दुनिया, हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे वैश्विक संबंध, यहाँ तक कि हमारी पहचान की भावना, इन सबकी जड़ें कितनी गहरी और कितनी जटिल रूप से 18वीं सदी के ब्रिटेन में समाई हुई हैं।
हाँ,
ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि कई दशकों तक चले गहरे और अक्सर विरोधाभासी बदलावों का नतीजा था। राजनीति, पैसा, युद्ध, समाज, संस्कृति सब मिलकर इस बदलाव को रच रहे थे।
और मेरे लिए लैंगफोर्ड की सबसे बड़ी देन ये याद दिलाना है कि इतिहास कभी भी एक सीधी साफ सुथरी कहानी नहीं होता। तरक्की और आधुनिकता अक्सर अपने साथ गहरे विरोधाभास और भारी मानवीय कीमतें लेकर आती हैं। शिष्टाचार के मुखौटे के पीछे क्रूरता छिपी हो सकती है, आज़ादी के नारों के साथ गुलामी चल सकती है। इन तनावों और जटिलताओं को समझना ही शायद इतिहास और अपने समय को भी बेहतर ढंग से समझने की कुंजी है।
सही कहा।
ब्रिटेन का वो अनोखा राजकोषीय सैन्य राज्य मॉडल जो मुनाफे और युद्ध के ईंधन पर चलता था, उसने दुनिया पर जो छाप छोड़ी है वो आज भी अच्छे और बुरे दोनों रूपों में हमारे साथ है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शक्ति, समृद्धि और नैतिकता के बीच का संतुलन कितना नाजुक होता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।